Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi jana vala bha girvara dhani.
Gopi jana vala bha girvara dhani.
Gopi jana vala bha girvara dhani. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Sodanandana braja janaranjana. Sodanandana braja janaranjana. Jamnatira banachari. Jamnatira Vannachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi jana vala bha girvara dhani. Gopi jana vala bha girvara dhani. Sodanandana braja janaranjana. Sodanandana braja janaranjana. Jamnatira banachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi jana vala bha girvara dhani. Gopi jana vala bha girvara dhani. Sodanandana braja janaranjana. Jamnatira banachari. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaur Bhaktavinoda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaur Bhaktavinoda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaur Bhaktavinoda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Radha, Girdhari Radha, Girdhari Radha. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Baladev, Jai Subhadra. Hari Bhav, Hari Bhav, Hari Bhav. Hari Bhav, Hari Bhav, Hari Bhav, Hari Bhav. Hari Bhav, Hari Bhav, Hari Bhav, Hari Bhav.
Jai Om Vishnu Pad. All glories to the Samudra Vari. All glories to the Samudra Vari. All glories to the Samudra Vari. All glories to Sri Guru and Sri Guru. This is actually the same as you. The other one is better. I don't like this. The one I use on my American tour. हिंदी में कौन पढ़ेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. थोड़ी खांसी हो गई तो क्योंकि जन्माष्टमी है. हम जन्माष्टमी के उपलक्ष भागवतम क्लासों में भगवान की अलग अलग लीला पढ़ते हैं, सुनते हैं. तो आज हम भागवतम के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद का 78 श्लोक पढ़ेंगे. वाणी गुणानु कथाने श्रवणो कथायं हस्तो चा Karmasu manas tavam padayor naha smrityam shirat tava nivasa jagan praname drishti satam darshane stiyo bhava tanunam. Vani gunanu kathane shravano kathayam hasto cha karmasu manastav padayonah smrityam chirastava nivasa jagat praname drishti sadan darshane stu bhavat tanunam. Vani gunanu kathane shravano kathayam hasto cha karmasu manastha padayonah smrityam chirastava nivasa jagat praname drishti sadam darshane stu bhavat tanunam. Vani gunanu kathane shravano kathayam hasto cha karmasu manastav padayonah smrityam chirastava nivasa jagat praname drishti sadam darshane stu bhavat tanunam.
Oh.
माताजी शब्दार्थ
वाणी शब्द बोलने की शक्ति गुण अनुकथने सदैव आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में व्यस्त श्रवणो
ये ज्यादा जोर से नहीं इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हो
कान कथायाम
आपकी तथा
आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में हस्तो हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां च भी कर्मसु आपका आदेश पालन करने में लगाकर मनः मन तव आपका पादयोः चरण कमलों का नः हमारी स्मृत्याम ध्यान में लगी स्मृति में शिरः सिर तव आपका निवास जगत प्राणा में चूंकि आप सर्वव्यापी हैं और सर्वस्व हैं तथा हमारे शिरों को नत होना चाहिए भोग के लिए नहीं दृष्टि ही देखने की शक्ति सताम वैष्णवों के दर्शने दर्शन करने में अस्तु इसी तरह लगे रहे भवत तनुनाम जो आपसे अभिन्न है अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगें तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें हमारे सिर इस संसार के हर वस्तु को नमस्कार करें क्योंकि सारे वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूप का दर्शन करें तात्पर्य यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है यह विधि भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए इसे नारद स्वयंभू तथा शंभू जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा यही विधि है हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यत मत ततपथ मूर्खतापूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्याहम अज्ञाग्राह, केवल भक्ति के कार्य द्वारा मुझे समझा जा सकता है। यह अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है।
ओम ज्ञान दिमंदस्य ज्ञानंजन शोक्य चक्षुर्मिलितानियेन तस्मान् श्री चैतन्य साबितामेन वन्देहं श्रीगुरु श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सगजतां सहगना रघुनाथं तं सद्वैतं सह हे कृष्णा करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेशा गोपीकांता वंचा कब हरे वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायम हस्तौ च कर्मासु मनस्तव पादयो नः स्मृत्यं शिरस्तावनिवसन् जगत्प्रणामे दृष्टि सतं दर्शनेषु भवत्तनूनां ते श्लोक उच्चारण कुबेर के दो पुत्र कर रहे हैं जिनका नाम था नलकवाड़ा और मणिग्रीवा। तो इस समय हम जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं। भौतिक दृष्टि से आप देख रहे हो आपने पांडा लगा लिया है, लोगों को निमंत्रण दे रहे हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी ये तैयारी होनी चाहिए कि हम कृष्णा लीला कृष्णा कथा में रुचि बढ़ाएं, क्योंकि कृष्णा कथा में रुचि बढ़ाने से ही आप भौतिक आकर्षण को नष्ट कर सकोगे। जन्माष्टमी वैष्णव के लिए वो शुभ अवसर है, शुभ दिन है, जबकि परम भगवान प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। जन्म आप और हम लेते हैं, और हम जन्म लेते हैं कर्मों के अनुसार। परम भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं और अपने ही भक्तों को माता पिता भाई बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। जो सूर हैं वो भी भगवान के भक्त हैं। भगवान उन्हें मौका देते हैं अपनी दिव्य लीला को ज़्यादा मधुर बनाने के लिए। और भगवान क्यों प्रकट होते हैं? पारितनाया साधु नाम विनय चित्त दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी योगे योगे। हम सबका अभ्यास है कि समय के साथ हर चीज पुरानी हो जाती है, हम भूल जाते हैं। आज आप नई मोटर खरीदते हो, नया मकान बनाते हो, नया शरीर है आपका, समय के साथ यही बूढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार धर्म भी कई बार समय के साथ लोग इसको गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, उनके प्रकट होने के 50-100 साल बाद उनकी शिक्षा जो थी कहीं उनके प्रतिनिधियों ने बदल दी थी। फिर ठाकुर भक्ति विनोद जी प्रकट हुए जिन्होंने शुद्ध रूप से चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को फिर से स्थापित किया। तो परम भगवान अपने भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे वासुदेव और देवकी, वासुदेव देवकी ने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए बहुत गहरी तपस्या उठाई थी। एक बूंद पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं। क्या थी उनकी खुराक? पत्ते जो पेड़ों से गिरते थे और हवा, बस। और दिन रात उनका एक ही विषय का चिंतन था, हमें परम भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो भगवान अपने ही भक्तों को माता पिता इत्यादि के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके भाई बालराम वो हमेशा प्रकट होते हैं उनके साथ, कभी कभी छोटे भाई के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में। जैसे जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो वो प्रकट हुए थे छोटे भाई के रूप में, लक्ष्मण के रूप में। और जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे वो प्रकट हुए थे बड़े भाई के रूप में, 15 दिन बड़े थे। और जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए तो वो भी प्रकट हुए थे बड़े भाई के रूप में। नित्यानंद जी 12 साल बड़े थे महाप्रभु से। तो परम भगवान प्रकट होते हैं धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। और भगवान ने गीता में कहा है जन्म कर्म चामे दिव्यम, प्रकट और प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। और भगवान का जो ध्येय है वो भी दिव्यम है। सच्चिद आनंदा विग्रह, सच्चिद आनंदा, ये है उनका एक रूप कि इस आनंद में रहते हैं, इटर्नल फुल ऑफ नॉलेज और ब्लिस, हमेशा सनातन है, ज्ञान से भरे हुए हैं और सदा आनंद में रहते हैं। तो परम भगवान को समझने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? केवल भक्ति की। जैसे कि आज जो हमने आपको श्लोक पढ़कर सुनाया उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा परम भगवान को समझ सकते हो। भगवान ने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयोजन, अगर तुम प्रेम और भक्ति के साथ मुझे थोड़ा सा जल भी अर्पण करोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। पर प्रश्न या समस्या यह है हम प्रेम और भक्ति को कैसे अनुकूल करने। भगवान को समझने के लिए या प्रसन्न करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, भौतिक सुंदरता की आवश्यकता नहीं, नहीं भौतिक शिक्षा की तालीम की आवश्यकता, केवल श्रद्धा और सेवा भावना की आवश्यकता है। तो भगवान प्रस्तुत क्यों करते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। आज से 5,000 साल पूर्व पृथ्वी पर असुरिक स्वभाव के राजाओं का शासन चल रहा था। और जब शासन करने वाले अधिकारी असुरिक स्वभाव के हों तो प्रजा पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएटर बुलाया जाता है, पहले क्रिएटर तो परम भगवान है। उनके आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी आगे सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो सारे देवता, जैसे परंपरा होती है एक मंदिर में प्रेसिडेंट, जीवीसी, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ये परंपरा है। अगर देवताओं को कोई समस्या हो तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी फिर आगे जाते हैं विष्णु के पास। तो सारे देवता आए ब्रह्मा जी के पास ये कहने के लिए कि भगवान को कुछ प्रकट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, नहीं तो असुरों के शासन से प्रजा दुखी रहेगी। तो ब्रह्मा जी गए दूध के सागर के तट पर और विष्णु जी से उन्होंने ये समस्या आगे अर्पण की और भगवान विष्णु ने कहा, घबराओ मत, परम भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी ने सूचना दी देवताओं को, देवता बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं। और भगवान प्रकट होए, ये बड़ी सुंदर लीला है। वासुदेव देवकी देवकी थी कंस की बहन। तो कंस अपनी बहन और बनोई बड़न लो वासुदेव को छोड़ने जा रहे थे घर में, ये रिवाज है कि एक दिव्य वाणी ने उसे कहा कि हे मूर्ख व्यक्ति, तुम जानता नहीं तुम्हारे रथ में कौन बैठा है? इस बहन के आठवां बेटा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस तो सुरीक स्वभाव के थे, उन्होंने कहा मेरी बहन का आठवां बेटा मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो मुझे मेरी बहन को मारने दो, बहन रहेगी नहीं तो बच्चे भी नहीं आएंगे। तो जब वासुदेव ने देखा कि बड़ी गंभीर परिस्थिति है, तो वासुदेव ने उन्हें समझाया सिद्धांत से कि शरीर तो हम सब ने त्यागना ही है, तुम विवाह वाले दिन अपनी बहन को क्यों त्यागना चाहते हो और क्यों उनको समाप्त करना चाहते हो? तुम्हें तो भय है उनके आठवें बेटे से, तो जब बच्चे पैदा होंगे हम ला देंगे तुम्हारे सामने। अगर तुम्हें लगा कि ये बच्चों में खतरा है तो तुम उन्हें मार देना, और अगर खतरा नहीं है तो छोड़ देना। कम से कम हाँ, ये तो अच्छी सजेशन, अच्छी राय है, मैं बहन को नहीं मारता। तो भगवान के प्रकट होने से पहले एक मारीची के छह पुत्रों ने जन्म लिया था देवकी के गर्भ से। मारीची को मन का अवतार माना जाता है और कहा जाता है कि मारीची के छह पुत्र हैं। उन पुत्रों का नाम क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। भगवान ने गीता में कहा, जब अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं, भगवान ने कहा काम ऐसे, क्रोध ऐसे, राजगुच्छ मुद भवा। भगवान ने कहा कामा के प्रभाव के कारण हम जानते हुए भी गलत काम करते हैं, और ये जो कामा है इसका रहने का स्थान कहाँ है? मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। और भगवान ने कहा तो इसको नष्ट करो, कैसे? ज्ञान की तलवार से, ज्ञान के सहयोग से। जैसे अंधेरापन दूर होता है रोशनी से, अज्ञानता दूर होती है ज्ञान के सहयोग से। क्रोध, हमें क्रोध आता है जब हमें जो आदर हमें मिलना चाहिए यह नेतृत्व की सुविधा अगर हमें प्राप्त नहीं हो, पर क्रोध भी हमारा आध्यात्मिक जीवन में शत्रु है। भगवान ने गीता में कहा है 3 paths leading to hell, क्या है वो? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, कामा, क्रोध और लाला लोभ। ये तीन जो हैं, ये तीन आपको कहाँ पहुँचाते हैं? नरक। आप देखते हो धनी व्यक्ति इतने धनी हैं, जब भी दिन रात योजना बनाने धन को और बढ़ाने के लिए, है ना, लोभा की कोई सीमा नहीं है। तो लोभा, फिर मद मत्सर्य, हम भ्रम में रहते हैं, भ्रम में रहने के कारण हम समझ नहीं पाते हमारा क्या स्वरूप है। और हम पागल हो जाते हैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे। आज देखते हो आज के वातावरण में लोग तड़प रहे हैं, इतने दुखी हैं, जब भी उनके मन में एक ही योजना है, भाव है इंद्रिय तृप्ति का। तो ये जो छह अनर्थ, इनको हम अनर्था के नाम से भी जानते हैं, ये जो छह अनर्थ हैं ये जन्म लेते हैं कहां से? मन से। मरीची के, मरीची मन का अवतार है। और ये छह जब प्रकट हुए थे, कंस ने उनको छह के छह को मार दिया था। तो इससे आध्यात्मिक दृष्टि के से एक बड़ा गहरा संदेश है जो हमें समझना चाहिए। वो संदेश यह है कि अगर आप चाहते हो कि परम भगवान आपके हृदय में बैठे, अगर आप चाहते हो कि आप परम भगवान को ठीक रूप से समझो, अगर आप चाहते हो कि आप परम भगवान की भक्ति में जुड़ो, अगर आप चाहते हो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो फिर आपको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को क्या करना चाहिए? भगा देना चाहिए। भगवान प्रकट होने से पहले ये मान लीजिए कि छह शत्रु पुत्रों का वर हुआ, को मारा गया। क्यों? इसे भगवान ये संदेश मिल रहा है, भगवान अगर आपको चाहिए तो इनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, फिर भगवान आकर रहेंगे आपके हृदय में। तो भगवान पृथ्वी पर आते हैं और अपने दिव्य लीला को प्रकट करते हैं। बालराम जी सातवें बेटे थे, पर भगवान ने योगा माया को भेजा, वो बालराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के घर में ले गए और फिर परम भगवान प्रकट हुए। जब वो प्रकट भी हुए, वो प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, और जैसे आप देखते हो इस तस्वीर में अपने दिव्य विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर माता पिता ने कहा हम तो जेल खाने में हैं, बेटा साधारण रूप ग्रहण कर लो, नहीं तो कंस को सूचना पहुंच जाएगी। भगवान ने एकदम साधारण रूप ग्रहण कर लिया। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। भौतिकवादी व्यक्ति और कम बुद्धि के व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भगवान नरसिंहदेव रूप में प्रकट होते हैं, मछली के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान वराह के रूप में प्रकट होते हैं, उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो अगर आप अपने भौतिक दृष्टि से मापो और कहो ये कैसे संभव है, आधे पुरुष आधे इंसान के रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं, भगवान के लिए कोई भी कार्य जो है असंभव नहीं है। तो परम भगवान जो लीला भी प्रकट करते हैं, ये अद्भुत लीला है। आज के वातावरण में आपको ऐसे सज्जन मिलते हैं जो कहते हैं हम तो भगवान के अवतार हैं। अवतार शब्द आज बड़ा प्रसिद्ध शब्द बन गया है। वैसे अवतार का तो अर्थ है जो वैकुंठ धाम भगवान के धाम से प्रकट होता है। प्रसिद्ध शब्द क्यों बन गया? एक हॉलीवुड की फिल्म प्रोड्यूसर ने $200 मिलियन खर्च कर एक सिनेमा बनाया है अवतार, और वो फिल्म हमने देखी नहीं फिल्म ऐसे, पर और वो फिल्म सारे विश्व में बहुत बड़ी हिट हुई है। तो आज ये अवतार शब्द सब सारे देशों में, मैं इटली में था वहाँ भी बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं अवतार। क्यों उन्होंने ये अवतार नाम दिया भगवान ही जाने, फिल्म में कृष्णा का कुछ ज्ञान नहीं है, पर वो फिल्म का नाम है अवतार। तो अवतार का मतलब है जो प्रकट होता है कहाँ से? भगवान के धाम से। और परम भगवान जब प्रकट हुए तो बचपन से ही उन्होंने अपनी दिव्य लीला जो अद्भुत है, अद्भुत लीला है, उसे प्रकट किया। आज के अवतारों को अगर आप कहो आप क्या भगवान समान दिव्य लीला प्रकट कर सकते हो तो क्या कहेंगे, आज नहीं पर कल करेंगे। और अगर कल पूछो तो कहेंगे हाँ अभी थोड़े समय बाद। पर परम भगवान शुरू से ही अद्भुत लीला प्रकट करते हैं और भगवान के गुणों का वर्णन शास्त्र में है। उदाहरण के लिए पराश मुनि जो व्यासदेव जी के पिता हैं, उन्होंने कहा ऐश्वर्य समाग्रस्य वीर सा यशाश ज्ञान विराग्याव शैव सन्न भागय तिंगना। ये भगवान शब्द उसके लिए उपयोग किया जा सकता है जिसमें छह प्रकार के गुण हो एक साथ असीम मात्रा में। क्या ये छह प्रकार के? ऐश्वर्य समाग्रस्य सबसे धनी, वीर्यस्य सबसे बलवान, सबसे खूबसूरत, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा त्यागी। आज भी हम भगवद गीता को पढ़ते हैं, आज भी हम भागवतम को पढ़ते हैं, हालांकि ये संदेश हजारों साल पुराना है। तो ये है भगवान के ज्ञान और साधारण व्यक्ति के ज्ञान में अंतर। तो भगवान शब्द को हमें ठीक रूप से समझना चाहिए। और अगर आप देवताओं को भी अजमाओ, आप देखोगे कि किसी में कृष्ण भगवान के अलावा किसी में ये छह प्रकार के ऐश्वर्य एक साथ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए शास्त्रों का निर्णय क्या है, कृष्ण त्यु भगवान स्वयं। तो कृष्ण भगवान को अगर हम परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके पीछे कारण है। ये नहीं कि ये भक्तिदंत स्वामी प्रभुपाद की कल्पना थी या इच्छा थी तो कृष्ण भगवान भगवान बन गए। ये शास्त्रों का प्रमाण है। ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह नादि नादि गोविंद सर्व कारण कारण। जैसे आप जानते हो ब्रह्मा संहिता के इस प्रसिद्ध श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनेक ईश्वर हैं पर एक ही परमेश्वर है। और क्या है वो? उसका नाम है कृष्ण। वो है हर चीज के कारण। ब्रह्म अर्जुन ने भी कहा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवम, आप ही हो परम भगवान। और चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृतया, अनेक ईश्वर हैं। नहीं, हम एकला ईश्वर कृष्ण, एक ही ईश्वर है आर सब भृतया। भृतया का मतलब सेवक। तो जो देवता है वो भी भगवान के सेवक हैं। ये नहीं कि हम अपने मन के अनुसार ये निर्णय कर लें ये पंथ होना चाहिए या सब भगवान एक हैं, किसी पंथ पर भी चलो किसी मार्ग पर चलो अंत में एक ही नतीजा होगा। नहीं, जो देवता हैं वो भी स्वीकार करते हैं श्रीमद् भागवतम को सबसे उत्तम ज्ञान माना जाता है। और ये उत्तम ज्ञान आ रहा है कहाँ से? भगवान के दिव्य धाम से। और ये नीचे पहुँचाया जा रहा है गुरु परंपरा के द्वारा। भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि हमें ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त करना चाहिए। और अगर ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो तो ये हर समस्या की औषधि ये उपाय बन जाती है। तो भगवान अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। अनेक असुरों का वध किया भगवान ने, है ना। भगवान ने कुल मिलाकर 21 प्रसिद्ध असुरों का वध किया और बालराम जी ने सिर्फ 3-4 का बस। तो ये जो असुर हैं जो जब हम का वध करते हो भगवान करते हैं, इन लीलाओं को अगर आप ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपके जो भौतिक आकर्षण है वो नष्ट होगा। उदाहरण के लिए एक बालराम जी की लीला है। बालराम हैं भगवान के बड़े भाई, उनका सदा एक ही भाव रहता है मेरे भाई की सेवा, और उनके मन में कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं किसी विषय का, 24 घंटे एक ही चिंतन। और उन्हें पता था कि कृष्ण भगवान का असली स्वरूप क्या है। जो बाकी रिश्तेदार थे, चाहे वो यशोदा माता, नंद महाराज वगैरह, भगवान की योगा माया शक्ति के द्वारा वो ये नहीं पहचान सके कि उनका बेटा है कौन। वो यही सोच रहे थे, लगता है हमारे बेटे पर नारायण की खास कृपा है, लगता है शायद ये प्रसिद्ध देवता तो नहीं है, तो भगवान की खास कृपा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा बड़े बड़े असुर आ रहे थे, पुतना खूबसूरत वस्त्रों में सजी हुई है पोंछी, और उसका भाव क्या था, स्तन में जहर जोड़ी हुई थी उसने कि जहर पिला दे, पर जहर पिलाने के बजाय उसी का जीवन समाप्त हो गया। शकत सूरा चिनावर्ता, चिनावर्ता ने एक वर्ल्डविन का रूप धारण कर लिया था। तो ये सारे असुर जिन्हें भेजा था कंस ने इस भावना के साथ कि किसी प्रकार से कृष्ण का वध करो, तो ये सब ये लीलाओं को आप सुनोगे, सुनने से आपके अनेक भौतिक आकर्षण घटेगा। तो बालराम जी, पिछले हफ्ते आपने उनका आविर्भाव तिथि मनाया था, तो बालराम जी का अर्थ है जो हमें शक्ति देते हैं भक्ति के मार्ग में। और प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण बालराम की स्थापना की वृंदावन में, एक कारण प्रभुपाद जी ने कहा यह था, उन्होंने कहा कि वृंदावन में राधा कृष्ण के हजारों मंदिर हैं पर कृष्ण बालराम का कोई नहीं था। और रमन रेती जिस स्थान में कृष्ण बालराम जी ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी, रमन रेती में भगवान ने खुद अपनी लीला प्रकट की थी। तो एक समय एक राक्षस था प्रलम्बासुरा। प्रलम्बासुरा को कंस ने भेजा था इस भावना के साथ, दोनों भाइयों का वध करो। कौन दो भाई? कृष्ण और बाला। तो कृष्ण भगवान समझ गए, प्रलम्बासुरा बड़े सुंदर वस्त्रों में सज कर आया और भगवान की जो सेना थी ग्वालों की उसमें मिल गया आकर, भगवान ने देख लिया इसको आते हुए, और उन्होंने ऐसा व्यवहार रखा कि उन्होंने देखा ही नहीं। फिर प्रलम्बासुरा बड़ा खुश हुआ कि मैंने सबको धोखा दे दिया है। तो दो टीम बनी थी, एक टीम थी कृष्णा की, एक थी बालराम की। और प्रबंध ये था कि जो हारेगा वो सामने के सेना के सदस्यों को अपने पीठ में उठाएगा। आप लोग ये गेम खेलते हैं अभी भी बचपन? आजकल तो लोगों को कंप्यूटर गेम्स चाहिए है ना, जिसमें बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो ऐसा हुआ खेल में, कृष्ण भगवान की सेना हार गई और बालराम की सेना जीती, जिसका मतलब ये था कि कृष्ण भगवान की सेना के हर व्यक्ति को अपने पीठ में सामने के सेना के एक सदस्य को उठाकर चलना है, जैसे घोड़े में बैठकर आप चलाते हो। तो कृष्ण भगवान की सेना के हर सदस्य को घोड़ा बनना है। तो प्रलम्बासुरा भी घोड़ा बन गया और इसने अपने पीठ में उठाया बालराम को। तो उसकी भावना थी, मैं बालराम को अपने पीठ में बिठाकर इतना दूर ले जाऊंगा कि कोई देख नहीं पाएगा और फिर उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो बालराम को अपने पीठ में बिठा लिया और वो दूर 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 जाने लगा। जब बहुत दूर पहुंचा तो बालराम ने अपना असली रूप प्रकट किया। बालराम जी ने फिर इस प्रहलाद सूर्य ने अपना असली रूप प्रकट किया और फिर इसका वध हुआ बालराम के हाथ में। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी हमारे महान आचार्य हमें समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से ये लीला पढ़ेगा और सुनेगा, जिसके द्वारा प्रलंब सूर का वध हुआ बालराम के हाथों में, तो इस लीला सुनने से क्या लाभ है? हमारा जो भौतिक आकर्षण है स्त्रियों के प्रति, जो हमारे हृदय में प्राण प्रतिष्ठा की भाव है, जो हमारे हृदय में धन के लिए लालच है, ये हैं शत्रु। धन के लिए लालच, हमें भक्ति चाहिए पर धन, हम ये नहीं कह रहे धन नहीं कमाओ, पर कई बार इतना लालच होता है कि हम अध्यात्मिक नक में समय नहीं दे पाते। फिर हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हम भक्त भी बन जाते हैं पर प्रतिष्ठा से नहीं मुक्त होते। हम चाहते हैं सब कहें हम सबसे अच्छे भक्त हैं, मीरा रोड में हमने सबसे ज़्यादा श्लोकों को कंठस्थ किया हुआ है, हम सबसे सुंदर प्रवचन देते हैं। तो ये है प्रतिष्ठा की भावना। फिर भौतिक आकर्षण, इंद्रियतृप्ति, भोग विलास की इच्छा, तो इसके कारण भी हम भगवान के शरणागत नहीं होते। तो ठाकुर भक्तियों जी कहते हैं ये भगवान की प्रलंब सूरा की लीला सुनोगे तो इसके द्वारा ये जो आपकी भौतिक इच्छा है प्रतिष्ठा के लिए और भौतिक धन कमाने के लिए और भौतिक भोग विलास इत्यादि का आकर्षण, ये सब जो भावनाएं घटेंगी कैसे? ये लीला सुनकर कि भाव भगवान ने असंभव प्रलंब सूरा का वध कैसे किया। तो ये जो कथाएं हैं इनके पीछे गहरा संदेश रहता है, और ये कृष्ण कथा सुनने से हमारा शुद्ध हृदय शुद्ध बनता है। कई बार लोगों से पूछो भगवान क्यों प्रकट हुए असुरों का वध करने के लिए, पर असुरों का वध भगवान आसानी से कर सकते हैं। आज के जमाने में रोज करोड़ों असुरों का वध हो रहा है ना, ये थोड़ी कि भगवान खुद प्रकट होते हैं उनको 847 या तो वैसे खुद ही खुद कोई बीमारी होती है, कुछ होती है और जीवन समाप्त हो जाता है। पर भगवान असल में प्रकट होते हैं कृष्णा लीला को प्रकट करने के लिए, और कृष्णा लीला को प्रकट करेंगे, कृष्णा लीला को प्रकट करते हैं किस लिए? कृष्णा लीला को प्रकट करते हैं अपने भक्तों की भलाई के लिए, भक्तों के सुधार के लिए। और भागवतम में जो अनेक लीलाएँ हैं इन सब के पीछे एक ठीक है प्रभु, इन सब के पीछे गहरी कथा है। तो जैसे कि आज हमने जो श्लोक पढ़ा, ये श्लोक है भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय से, जिसमें यमुना अर्जुन की कथा, वृक्षों का उद्धार की कथा है। तो यमुना अर्जुन वृक्षों की उद्धार की कथा, और भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं कि अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनोगे तो आप अपनी अनेक कमजोरियों को नष्ट कर सकोगे। क्या कौन सी? एक, धन के कारण गौरव घमंड, हमने धनी खानदान में जन्म लिया है, हम ऊंचे पद के हैं, और धनी खानदान के व्यक्तियों में क्या अक्सर घमंड आ जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की इच्छा रहती है ना। और अगर आप किसी धनी व्यक्ति को बुलाओ और आदर नहीं दो वो फिर से आता ही नहीं, आदर दोगे तो आएगा। तो ये है भावना, धन के कारण धन का फिर दुरुपयोग करना। धन का उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में, जैसे प्राचीन समय में भारत के जितने बड़े मंदिर थे ये सब राजाओं ने बनाया था। क्या यूरोप में जो बड़े बड़े चर्चेज हैं जिनको देखने के लिए हजारों लोग रोज जाते हैं, इन सब को बनाया किसने? राजाओं ने। तो धन का सदुपयोग है जब आप इसे भगवान की सेवा में उपयोग करो, और जब आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करो तो ये है उसका दुरुपयोग। तो नलकवन और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। कुबेर कौन है? देवताओं के खजान चीज। और ये जो दो थे, नलका ये थे कुबेर के पुत्र और शिव जी के भक्त, और ये थे शिव जी के भक्त और उन्होंने एक शिव जी को प्रसन्न करके पर्वत कैलाश पहुंचने के वीजा मिल गया था इन्हें। जैसे आप किधर विदेश में जाते हैं तो वीजा चाहिए, तो पर्वत कैलाश में चले गए थे। और एक दिन मंडकिनी गंगा के तट पर खेल रहे थे, खिस के साथ स्त्रियों के साथ, और वरुणी शराब के नशे में थे। तो शिव जी तो आप जानते हो आशुतोष हैं, जल्दी से प्रसन्न होते हैं, जल्दी से क्रोधित होते हैं। तो नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। नारद, ऐसे तो नारद मुनि शक्त वेश अवतार हैं, और नारद का अर्थ है जो केवल नारायण पहुंचाना चाहता है हर व्यक्ति को। और नारद मुनि वो मृगारी शिकारी के गुरु हैं, वो व्यासदेव के गुरु हैं, ध्रुव महाराज के गुरु हैं, तो वो उनके अनेक साथी ऐसे हैं। तो नारद मुनि वहां से गुजर कर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा जैसे एक हाथी हाथियों के साथ खेलता है जल्दी में जल में, ये कुबेर के पुत्र खेल रहे थे नंगी स्त्रियों के साथ। वो जब नारद मुनि वहां पहुंचे, स्त्रियों ने तो अपना शरीर ढक दिया, पर ये दो भाई इतने नशे में थे शरीर ढकना भूल गए, ध्यान ही नहीं आया। तो नारद मुनि ने सोचा कि मुझे इन दो भाइयों को खास कृपा करने दो। मोर साधु की क्या कृपा है, कई बार साधु को पहले कड़की करनी पड़ती है और फिर बाद में उसका परिणाम होता है। तो नारद मुनि ने पहले इन दो भाइयों को श्राप दे दिया। क्या श्राप था, कि तुम नंद महाराज के आंगन में क्या बन जाओगे, फिर वृक्ष बन जाओगे। पर साथ में ये वर भी दिया कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। हमारे पृथ्वी में और देवताओं के स्थान पर समय को अलग तरीके से गिनते हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी का एक दिन 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है, हमारे पृथ्वी का 1 साल उनके 1 दिन के बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 100 सालों के। तो नलकर और मणिग्रीव क्या बन गए, वृक्ष बन गए। कहाँ, नंद महाराज के आंगन में। जो हमारे मंदिरों के आंगन में पेड़ हैं वो भी बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे हमारे जू के मंदिर में आपने देखा होगा आंगन में 2 पेड़ हैं, अत्यंत भाग्यशाली हैं। ये 2 पेड़ सारा दिन राधा राजवाड़ी का दर्शन लेते हैं, हर आरती में उपस्थित होते हैं। आप लोग तो 1 आरती में आते हो फिर भाग जाते हो, 5 मिनट दर्शन लेते हो फिर हम भागते हैं। इस वृंदावन में तमाल का पेड़ है, सारा दिन राधा श्याम सुंदर का दर्शन, सारा दिन कीर्तन को सुनते हैं। तो वह मंदिर में कोई पेड़ भी हो तो अत्यंत सौभाग्यशाली हो। हमें भी मंदिर बनाते बनाते कम से कम पेड़ों को काटना चाहिए, ये था प्रॉपर का सिद्धांत। केवल जहाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण हो, कोई उपाय नहीं हो तो अलग बात। तो अब भगवान को पता था कि मेरे भक्त ने ये वर दिया है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को अनेक प्रकार के वर दे दिए थे। हिरण्यकश्यपु की योजना तो ये थी कि उसे मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़े, और जब उन्होंने ये विनती ये निवेदन किया ब्रह्मा जी से, मुझे वर दीजिए कि मुझे मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ये वर तुम्हें कैसे दूं जब मुझे भी झुकना पड़ेगा मृत्यु के सामने। ब्रह्मा जी की आयु है 311 trillion 40 billion years, हिंदी में क्या बोलते हैं, 311 trillion 40 billion। उसके पश्चात उनको भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के वर दे दिए थे हिरण्यकश्यपु, जिसके कारण हिरण्यकश्यपु ने सोचा अब तो बस मैं हमेशा के लिए रहूंगा, और मुझे कौन मार सकता है, ना मुझे हार्ट अटैक होएगा, ना कोई बीमारी, मुझे ब्रह्मा जी ने हर प्रकार का वर दे दिया है। तो भगवान प्रकट हुए नरसिंह देव के रूप में, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा के सब वचनों का पालन किया। और जब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया तो उसके पश्चात भगवान नरसिंहदेव ने ब्रह्मा से कहा, ऐसा वर भविष्य में नहीं देना, तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था, क्योंकि भगवान के लिए ये बड़ा क्या, भगवान को सोचना पड़ा कैसे मेरे भाग कि सब वचनों को पूरा करते हुए मैं प्रहलाद की सुरक्षा करूं। तो भगवान को उखल के साथ बांधा हुआ था, है ना, क्यों बांधा हुआ था, आप पिछले 9वें अध्याय में भगवान के दामोदर लीला पढ़ते हो कि गोपियां जो थी उनका सदा वो शिकायत करती थी भगवान यशोदा माता से, आपका बेटा हमारे घर में आकर हमारा दूध मक्खन सब चुरा लेते हैं। तो यशोदा माता कहती थी, फिर तुम ऊपर क्यों नहीं रख लेते, और ऊपर रख दो, ये तो छोटे हैं, हाँ ऊपर रखते हैं वहां भी ये पहुंच जाते हैं, तो एक के ऊपर कंधा रखकर। फिर कहने लगी, फिर कहने लगे, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। कैसे, क्योंकि जो गहने ये पहन रहे हैं इन गहनों द्वारा इतना प्रकाश प्रकट होता है कि वो अंधेरे में पहचान लेते हैं कहाँ है हमारा, कहाँ है दूध मक्खन का। फिर यशोदा माता कहती थी, बोलो तो मैं उनके गहने निकाल देती हूँ, फिर वो अंधेरे में देख नहीं पाएंगे। पर गोपियों का इतना स्नेह था, वो कहती थी, नहीं 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 गहने मत निकालो। पर यशोदा माता ने प्रयास किया था अपने बेटे को बांधने के लिए, उनके पीछे भागी थी। उस समय में जो गायों द्वारा दूध आता था, आप मानोगे नहीं, सुगंधित दूध होता था। आजकल तो चाहे अमेरिका की गाय हो इधर की, एक ही प्रकार का दूध मिलता है ना, पर आपको अलग अलग फ्लेवर चाहिए, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी वो सब वेनिला अंदर डालना पड़ता है ना। उस समय गायें अलग अलग सुगंध के दूध देती थी। देखो क्या टेक्नोलॉजी, क्योंकि गायें आज से हजारों गुना ज्यादा संतुष्ट भी थी। तो यशोदा माता को इतनी शिकायत आ रही थी कि उन्होंने निर्णय किया, क्या मुझे अपने बेटे को बांधने दो, ये बहुत शैतान हो गया है। और जब यशोदा माता इनसे पूछती थी गोपियों से, क्या तुमने आंखों से देखा है मेरे बेटे को चुराते हुए, केवल शक कर रहे हो, फिर उन्हें स्वीकार करना पड़ता था, यह हमारा शक है, हमने आंखों से नहीं देखा क्योंकि भगवान को कोई कभी पकड़ ही नहीं पाया, मक्खन चोर तो थे पर कोई पकड़ नहीं पाया। तो खैर यशोदा माता ने निर्णय कर लिया था कि मेरे बेटे को थोड़ा सबक सिखाना है, डिसिप्लिन लाना है, तो उनका प्रयास था उन्हें रस्सियों से बांधने के लिए। और रस्सियों से बांधने के उपलक्ष के प्रयास में उन्होंने अनेक रस्सियों को जोड़ा, 1 2 3 4 5, फिर जितनी रस्सियां थी वृंदावन की सबको जोड़ दिया। वो सबको जोड़ कर बांधने का प्रयास कर रहे थे, और ये सब जुड़ी रस्सियां भी अंत में 2 उंगली छोटी निकल रही थी, और जो बाकी गोपियां थी वो देख रही थी कैसे यशोदा माता प्रयास कर रही है अपने छोटे बेटे को बांधने के लिए और किस प्रकार वो असफल हो रही है। तो वह हंसने लगे और यशोदा माता का पसीना आ रहा था। एक तो लोग हंस रहे थे और दूसरी तरफ से उनके बेटे को वो बांध नहीं पाए। फिर भगवान ने देखा कि मेरी माँ निराश हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है, दूसरी गोपियाँ हंस रही हैं। फिर भगवान ने उन्हें बांधने दिया। तो भगवान को बांधा था तो भगवान को याद आया मेरे भक्त ने, कौन था उनका भक्त, नारद मुनि, मेरे भक्त ने ये वचन दिया है कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान तो बंधे हुए थे। भगवान ने उखल को 2 पेड़ों के बीच में फंसा दिया और फिर जोर से खींचा। जब खींचा तो 2 यमुना अर्जुन के पेड़, ये जो अर्जुन पेड़ है इसकी छाल का उपयोग करते हैं हार्ट की बीमारी को दूर करने के लिए आज भी, और प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं भागवतम में। तो अर्जुन भगवान ने 2 वृक्षों को नीचे गिरा दिया और ये 2 वृक्षों को जब नीचे गिरे, इन 2 पेड़ों से क्या निकले, कुबेर के 2 पुत्र नलकुवरा और मणिग्रह, उनके सिर से इतना प्रकाश प्रकट हो रहा था कि आप उसकी महिम उसकी उसका उसको उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जब ये 2 पेड़ गिरे उस समय यशोदा माता रसोई में प्रसाद का प्रबंध कर रही थी। जब उन्होंने देखा सुना 2 पेड़ गिर गए हैं तो घबरा गए और भागे भागे आई आंगन में। अरे ये पेड़ कैसे गिरे? तो दूसरे ग्वालों ने कहा ये पेड़ आपके बेटे ने गिराया है। उन्होंने कहा मेरे बेटे ने इतने 2 बड़े पेड़ों को गिराया, तो मखौल कर रहे हो क्या, ये छोटे बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ जाएगी, तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर कोई आंधी आई होगी या तूफान जिसके कारण ने 2 पेड़ गिर गए थे। तो भगवान की योगा माया शक्ति के द्वारा यशोदा माता समझ नहीं पाई कि ये पेड़ क्यों गिरे थे। अगर यशोदा माता को पता लग जाता कि मेरा बेटा स्वयं भगवान है तो उनकी चिंता ही समाप्त हो जाती, उनका रिश्ता ही बिल्कुल अलग रिश्ता होता, कभी वो डांट नहीं सकती थी अपने बेटे को। फिर ये है भगवान के भक्तों का खास सम्मान। तो जो कुबेर के 2 बेटे थे उन्होंने सबसे पहले नारद मुनि की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु की कृपा से आज हमें आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो ये है आध्यात्मिक मार्ग जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक परिवर्तन कर पाते हैं, कर सकते हैं, गुरु परंपरा द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो। भगवान ने भी गुरु स्वीकार किया था, कौन, संदीपनी मुनि। तो कुबेर के पुत्रों ने कहा कि हमारे गुरु नारद मुनि की कृपा से हमें आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, और बड़े सुंदर स्तुतियों के साथ उन्होंने आगे के श्लोकों में परम भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया। आप श्रीमद् भागवतम में देखते हो प्रथम स्कंद से 18वें स्कंद तक भगवान के जो भक्त हैं अनेक स्तुतियों के द्वारा क्या कर रहे हैं, परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और भक्तों का यही भाव रहता है परम भगवान का गुणगान करें। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है तो हमारी क्या तैयारी होगी, हमारी ये तैयारी होगी कि हम परम भगवान का गुणगान बढ़ाएं। और ये गुणगान हम बढ़ा सकते हैं 2 माध्यम से, जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करें और भगवान की कृष्ण कथा में हम रुचि लें। ये है आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए का मार्ग। तो कुबेर के दो बेटों ने नलकर मणिग्रीवा उन्हें भगवान के अनेक स्तुतियों द्वारा उनका गुणगान किया। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो तो ये देखते हो अनेक प्रसिद्ध देवता देवी क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान। जैसे कि इंद्र देवता, आजकल आप बॉम्बे वालों के ऊपर इंद्र जी की खास कृपा है, क्योंकि खास कृपा है तो बारिश ज़्यादा आ रही है ना। आप भक्तों ने हरि नाम किया इसलिए बारिश आ रही है, क्योंकि हम हरि नाम नहीं कर रहे तो बारिश नहीं आ रही। इस समय रशिया में बिल्कुल सूखा हो गया है, हालांकि उनके पास पानी की कमी नहीं है, पर 130 साल में इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी इस समय है। और ये साल बिल्कुल अकाल, सूखा, बारिश नहीं। अमेरिका में भी कई स्थानों में बारिश नहीं है, कनाडा में भी कई स्थानों में बारिश नहीं है। तो बारिश नहीं आनी क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जब पाप का बोझ बढ़ जाता है तो प्रकृति आपको साथ नहीं देती। भगवान गीता में कहते हैं अन्न के कारण अन्न प्राप्त होता है, वर्षा के कारण वर्षा प्राप्त होती है जब आप यज्ञ करोगे। यज्ञ नहीं करोगे, केवल पाप के कार्य करते जाओगे, निर्दोष गायों पर अत्याचार करते जाओगे तो आपको कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। भारत में कितनी निर्दोष गायों पर अत्याचार हो रहा है। मुझे कोई कह रहा था कि इंडिया इज सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, हम बीफ गाय के मांस का इतना एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, और जब आप निर्दोष गायों पर अत्याचार करोगे तो आपको हर अनेक प्रकार से कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो ये है प्रकृति का नियम। तो नंदमहाराज इंद्र यज्ञ कर रहे थे, बड़ी देवता कभी कभी घमंडित हो जाते हैं। तो नंदमहाराज ने अपने बेटे के कहने पर इंद्र यज्ञ को रुकवा दिया, रोक दिया। जब इंद्र ने देखा कि इसलाना इंद्र यज्ञ रुक गया है तो ब्रिजवासियों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने इतनी तेजी से बारिश भेजी, एक पानी का बूंद एक खंभे जितना भारी था, और समता का बादल को आगे भेजा। और भगवान ने क्या किया, बड़ी सरलता से गोवर्धन पर्वत को उठाकर बाएं हाथ के छोटी उंगली के बल पर पूरे ब्रिजवासियों की सुरक्षा की, और सारे ब्रिजवासी पूरे हफ्ते के लिए भगवान के चेहरे को देख रहे थे। और भगवान को चेहरे को देखने में इतना आनंद अनुभव हो रहा था कि उनको भूख और प्यास बिल्कुल मिट गई। जो भूख और प्यास लगती है बिल्कुल नहीं, वो तो केवल भगवान के चेहरे को देख रहे थे। तो अगर हम भी भगवान के चेहरे को देखते रहें तो हमारी जो भौतिक भूख और प्यास है वो समाप्त हो जाएगी। तो भगवान ने जब ब्रिजवासी की सुरक्षा की गोवर्धन पर्वत के माध्यम से, तो ब्रिजवासी कितने प्रसन्न है। और जब इंद्र ने देखा कि उनकी योजना सफल नहीं हुई तो इंद्र ने बड़े सुंदर स्तुतियों में भगवान के अनेक गुणों का उच्चारण किया। उसी प्रकार शिव जी जैसे हम कह रहे थे आशुतोष हैं, सरलता से प्रसन्न होते हैं, सरलता से क्रोधित हो जाते हैं। तो एक समय एक राक्षस था वृकासुर, वो गया कैलाश पर्वत में, उसे देखा शिव जी अपने आसन में नहीं है, तो यज्ञ के सामने जाकर यज्ञ में अपने शरीर के चमड़े को अर्पण करने लगा। जब शिव जी लौटे तो उन्होंने कहा अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने शरीर के चमड़े को क्यों काट रहे हो, मुझे आपसे एक वर चाहिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है, वर तो मिल जाएगा, पर चमड़े को क्यों काट रहे हो, शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो। तो शिव जी की कृपा से वो सारा चमड़ा वापस जोड़ दिया था। जैसे क्या था वर इन्हें चाहिए, जहाँ में हम हाथ रखेंगे हर चीज उसके नीचे समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जब ये निबिनती की गई शिव जी को, शिव जी ने कहा ये वर मैं कैसे दूँ, ये तो बड़ा खतरनाक वर है, इसे तो उसने कहा आप भूल चुके हो, वर दोगे अब तो देना ही पड़ेगा। और जैसे ही वर दिया इस असुर ने क्या किया, हाथ फैलाया कहाँ, पार्वती के सिर पर, हाँ शिव जी के सिर पर। इसकी योजना थी, इसका आकर्षण था पार्वती के प्रति, और फिर शिव जी को दौड़ना पड़ा। जब फिर श्वेता देव धाम में पहुंचे तो वहाँ भगवान ने ये जानते हैं कि क्या लीला बीत रही है, अपने आप को एक साधारण ब्रह्मचारी के रूप में प्रस्तुत किया। तो भगवान ने पूछा, बृहस्पति भागा भागा आया बाद में, हे किसका पीछा कर रहे हो, इतना क्यों भाग रहे हो? मैं शिव जी का पीछा कर रहा हूँ। क्यों? उन्होंने मुझे एक वर दिया था कि जहाँ भी मैं हाथ रखूँगा हर चीज़ उसके नीचे नष्ट हो जाएगी, और मैं हाथ रखना चाहता हूँ उनके सिर पर। तो भगवान ने कहा, तो बिना कारण के उसे झगड़ा करोगे तो मैं पाप लगेगा, पहले ये तो देखो कि वो जो वर दिया है वो सच्चा है या झूठा, और पहले मुझे अगर सच्चा है तो फिर तुम्हें मारने का पूरा अधिकार है, उन्होंने आपको झूठा वर दिया। और भूलो मत, जब से शिव का युद्ध हुआ है उसके ससुर दक्षा के साथ उनके वन में शक्ति नहीं रही। तो ब्रह्मेश्वर ने कहा, हाँ ये तो अच्छी राय दे रहे हैं मुझे, पर ये तो स्थापित करने दो वो सत्य और था झूठ। तो उसने इस ब्रह्मचारी की प्रेरणा के आधार पर हाथ रखा अपने सिर पर देखने के लिए कि कुछ फटता है कि नहीं, और फिर क्या फट गया। तो फिर शिव जी ने भी बड़े सुंदर स्तुतियों में एक परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया। आप चौथे स्कंध में देखते हो कि जब परिप्रचेत गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए, महाराज प्रचीन परिषद के पुत्र, उन्हें शिव जी ने एक मंत्र दिया, वो मंत्र क्या था, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान। इसी प्रकार इंद्र जी का हम कह चुके हैं, ब्रह्मा जी, सारे प्रसिद्ध जो देवता हैं क्या परम भगवान का गुणगान करते हैं। तो कुबेर के पुत्रों ने आभार प्रकट किया अपने गुरु महाराज का, और आगे बढ़कर उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया जो कि हम पढ़े, जो हमने पढ़ा था लगभग एक घंटे पहले, याद है आपको क्या है? तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कुबेर के पुत्र, अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवणम करें। कह रहे हैं सबसे पहले अब से, अब से का क्या अर्थ है, अब से का अर्थ है कि अज्ञानता में हमने कई गलतियां की, शराब के नशे में थे, स्त्रियों के साथ खेल रहे थे, पर अब गुरु की कृपा से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, गुरु की कृपा से हमें असली ज्ञान प्राप्त हुआ है, तब से हमने वो गलती जो पहले की थी फिर से नहीं करनी। तो ये होना चाहिए हमारा भाव, अज्ञानता में हमने अनेक प्रकार के पाप किए हैं, पर अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके सहयोग से हमें अज्ञानता का विरोध करना है, और इसलिए वो कह रहे हैं अब से। तो अब से हम सबका ये भाव होना चाहिए क्या, कि शब्दों द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। जो व्यक्ति शब्दों द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा द्वारा आपका भक्ति का जीवन मजबूत होएगा। और जो व्यक्ति कृष्ण कथा नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं, प्रजल्पा, भूल गए प्रजल्पक, और प्रजल्पक का अर्थ क्या है, वो चर्चा जिसकी भगवान से कोई संबंध नहीं हो। और क्या कहते हैं रूप गोस्वामी, अत्याहारा प्रश्रष्ट प्रजल्प नियमाग्रह जन संघर्ष सदीर भक्तिर विनशति, भक्ति नष्ट हो जाती है इन कार्यों के द्वारा जिनमें एक है प्रजल्प। तो आजकल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी प्रजल्पा तो बहुत सरल बन गया है, पहले आपको प्रजल्पा करना चाहिए था तो किसी को निमंत्रण देना पड़ता था या किसी के घर जाना पड़ता है, आजकल तो आप अकेले प्रजल्पा कर सकते हो। कई बार हम देखते हैं सड़कों में हम चल रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, हाँ उंगली उठा रहा है तो आपको दूर से लगता है पागल है क्या, अकेला आदमी चल रहा है और हाथ उठा रहा है, फिर जब वो निकट में आता है तो दिखता है क्या, ओ टेलीफोन है, टेलीफोन में बात कर रहे हैं। तो आजकल प्रचार पर बहुत सरल बन गया है, सोने जाते हैं लोग टेलीफोन के साथ, जागते हैं टेलीफोन के साथ। मुझे उस दिन दिल्ली में VSNL का चेयरमैन मिलने आया था, तो कह रहा था इन इंडिया देर आर 56 मिलियन टेलीफोन, 56% आबादी के पास टेलीफोन आ जाए, 50 से भी ज़्यादा, 56%, चाइना में 60 है, तो इंडिया में आजकल सबके पास, लगभग सबके पास टेलीफोन है। तो प्रजल्प करना बहुत आसान हो गया है ना। तो प्रजल्प से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस श्लोक का लाभ उठाना चाहिए। तो क्या प्रार्थना करें, हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवणम करें। तो भगवान ने हमें जीभ दिया है और कान दिया है, तो आपको जन्माष्टमी के उपलक्ष ये निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए कि हमने केवल कृष्ण कथा करना है, पर जल्प से बचना। तो आप कहोगे फिर हम दफ्तर में क्या करेंगे, डायमंड मार्केट डायमंड कैसे बेचेंगे, हमेशा कृष्ण कथा करेंगे तो गिराक थोड़ी आएगा। तो केवल उतनी भौतिक चर्चा करो जितनी की आवश्यक है, और अगर आवश्यक नहीं है तो मत करो। तो जीभ द्वारा क्या, भगवान का गुणगान, कानों द्वारा इसका श्रवणम। आगे हमारे हाथ पांव तथा अनेक इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्य में लगे रहे। तो भगवान ने हाथ दिया है, पांव दिया है, अनेक इंद्रियां दी है, इनका उपयोग करो भगवान को प्रसन्न करने में, पैरों का उपयोग करो भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए, मोटर या स्कूटर या साइकिल में जाने के लिए, पर पैरों का उपयोग करो किस लिए, भगवान के मंदिर पहुंचने के लिए। हाथों का उपयोग करो सेवा करने के लिए, मंदिर में आते हो झाड़ू भी मारो, बर्तन भी मांजो। हमारे मॉन्ट्रियल कनाडा के मंदिर में एक फ्रेंच कैनेडियन लड़का है जो 30 साल से रोज आता है भगवान के बर्तन को साफ करने के लिए, रोज आता है मंदिर 2-3 घंटे के लिए, बर्तन साफ करता है और जाता है। तो हमारे में भावना होनी चाहिए, जैसे श्लोक में कहा जा रहा है, हाथ पांव तथा इंद्रियों द्वारा क्या करें, भगवान की सेवा। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि रथ यात्रा शुरू होने से पहले महाराज प्रताप पुरुद्रा जो राजा थे, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पूरे रास्ते को साफ किया सोने के झाड़ू से, और इसके पश्चात उस रास्ते को गुलाब के पानी से खुद धोया, तो वो इतने प्रसन्न हुए कि चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें खास दिव्य दर्शन दिया उनके अद्भुत रूप का। और महाप्रभु रथ यात्रा के समय हर रात के साथ 8 कीर्तन मंडलियों की योजना करते थे, और महाप्रभु ने अपना विस्तार किया था और स्वयं उपस्थित थे 8 की 8 कीर्तन मंडली में, पर यह दिव्य दर्शन केवल उनके प्रसिद्ध चुने हुए साथियों को ही प्राप्त हो रहा था, और उन्होंने ये योग्यता दी किसे, महाराज प्रताप पुत्र को भी। और महाराज प्रताप पुत्र क्यों प्रसन्न हुए, महाप्रभु क्यों प्रसन्न हुए उनसे, उनकी विनम्रता देखकर। तो इसी प्रकार जब हम मंदिर में आते हैं, हमारा ये भाव नहीं होना चाहिए हमको सेवा चाहिए बस साहब की सेवा, अच्छा ऑफिस और 2-3 अधिकारी मदद जो हमारा कहना मानेंगे। हमारा भाव होना चाहिए आप सेवा करो, और ये शिक्षा आप सीख सकते हो सिखों के द्वारा। गुरुद्वारों में आप देखते हो जो धनी सिख हैं वो भी गुरुद्वारा जाते हैं क्या सेवा करने, जूते की सेवा और पानी पिलाने की सेवा, ये नहीं हमको तो साहब की सेवा चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं क्या, अमरीश महाराज क्या करते थे, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ कर देते। तो अगर आपको कोई तुच्छ सेवा भी करनी पड़ जाए, हाँ मंदिर साफ करो, बर्तन मांजो, बुरा नहीं मानना, ये नहीं कहना हमने तो वापस नहीं जाना मंदिर, हमको भंगी बना दिया। महाराज प्रतिपूजा को भंगी मानते थे, भगवान का भंगी, क्योंकि वो सड़क को साफ करते थे और फिर उसको धोते थे। फार्म तथा अन्य इंद्रियों से आपके प्रसन्न करने के कार्यों के लगे, पर हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का चिंतन करें। तो कह रहे हैं मन के द्वारा क्या, आपके चरण कमलों का चिंतन। तो मन के द्वारा भगवान के चरण कमलों का चिंतन के साधन क्या है? एक साधन है भगवान के स्वरूप का चिंतन। जैसे कि आपके इस मंदिर में श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्तियां हैं, उनका चिंतन। पर इसके अलावा आप इस्कॉन की अनेक मूर्तियों का दर्शन भी ले सकते हो। जैसे आज टेक्नोलॉजी के कारण आप राधा माधव मायापुर की मूर्तियों का दर्शन रोज ले सकते हो। टेक्नोलॉजी के दर्शन के कारण अब कृष्ण बलराम का दर्शन ले सकते हो रोज, है ना, राधा राजप्यारी का ले सकते हो। मुझे विदेशों में, अमेरिका में कई भक्त मिले जो रोज कृष्ण बलराम, राधा माधव, राधा राजप्यारी का दर्शन लेते हैं। तो आप भी ले सकते हो इंटरनेट द्वारा इन सब मंदिरों का। एक दिन आपके राधा, एक दिन राधा गिरधारी जी को भी इंटरनेट में डाल देंगे तो उनका दर्शन भी ले सकोगे। तो एक माध्यम है भगवान के रूप का, भगवान के रूप का दर्शन। दूसरा है भगवान के संदेश का, जैसे गीता का जो संदेश है उसका चिंतन करो। अर्जुन अत्यंत दुखी थे जब भगवान प्रकट हो गए थे, तो फिर अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया। उन्हें ऐसे लगा कि भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार इस्कॉन के हर भक्त को गीता के संदेश का स्मरण करना चाहिए। फिर भगवान के लीलाओं का, जैसे हम इस समय आप भगवान की लीला पढ़ रहे हो, जब उन्होंने यमुना अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया। पर इस दसवें स्कंद में भगवान की अनेक लीलाओं का आप पढ़ते हो और इन लीलाओं का स्मरण करो। फिर भगवान के उपदेश का, जैसे प्रहलाद महाराज वो सदा भगवान के उपदेश का, और ये उपदेश उन्होंने प्राप्त किया था जब वो माता के घर में थे, इस उपदेश का चिंतन करना। तो फिर हरिनाम, हरिनाम की महिमा का चिंतन करना। क्या क्या चिंतन कर गए? कली कली नाम रूपा कृष्ण, भगवान प्रकट होते अपने दिव्य नामों के रूप में। भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि अज्ञानता से भी अगर कोई उन नामों का उच्चारण कर ले तो उसे लाभ ही पहुंचेगा। और भगवान क्या कहते हैं, आनंद बुद्धि वर्धनम, इन नामों के उदाहरण से ये जो भक्ति की लहरें हैं वो बढ़ते जाएंगे और आपको क्या असली आनंद अनुभव होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है आपके चरण कमलों का चिंतन। तो जब आप शास्त्र में पढ़ते हो भगवान के चरण कमलों का चिंतन, इसका केवल ये अर्थ नहीं कि भगवान के चरणों की तस्वीर रख लो सामने चिंतन करो, वो भी एक अर्थ है, पर इसके साथ ये भी है भगवान के नाम रूप लीला इन विषयों का चिंतन करो। और भगवद गीता में खास करके अनेक श्लोकों द्वारा ये शिक्षा मिलती है क्या, मन को क्या करो, बंधु बनाओ और शत्रु नहीं। अगर मन आध्यात्मिक भाव के अनुसार चल रहा है तो मन को बंधु माना जाता है, और अगर मन भौतिक विषयों का चिंतन कर रहा है तो वो शत्रु माना जाता है। जिस व्यक्ति ने मन पर वश कर लिया उसके लिए भगवान गीता में कहते हैं हार जीत आदर अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी सब एक समान है। जिसने इन मन को वश में नहीं किया वो किसी स्थिति में भी संतुष्ट नहीं रहेगा, चाहे आप उसे सारे विश्व का धन दे दो। तो यहाँ कहा जा रहा है नंद कुंवर मणिग्रीवा के द्वारा, हमारा मन सदा आपका चिंतन करे। हमारा सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार नमस्कार करे, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप है। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। तो आगे कह रहे हैं कि हम हर वस्तु को प्रणाम करें, क्यों? क्योंकि सारी वस्तुएं जो है भगवान की हैं। हर वस्तु का सदुपयोग क्या है? भगवान के सेवा में उपयोग करना। उस दृष्टि से ये पूरी सृष्टि को जब आप देखते हो तो भक्त खुश होता है, कहते मेरे भगवान इतने महान है। जैसे जब नारद मुनि वो जा रहे थे भगवान के धाम में रिपोर्ट देने के लिए, तो रास्ते में एक मोची मिला और ब्राह्मण, तो भगवान ने तो कह दिया ब्राह्मण को, कहना कई और जन्म लेने पड़ेंगे, मोची को कह देना इस जीवन की समाप्ति पर। और अगर वो तुम्हारे से पूछे मैं क्या कर रहा था जब तुम मिले, तो क्या कहना? मैं एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहा था। तो जब ब्राह्मण ने ये सुना कि भगवान ने कहा कि तुम्हें तभी अनेक और जन्म मृत्यु अनुभव करना पड़ेगा, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लग रहा था नारद मुनि झूठ बोल रहे, मखौल कर रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब तुम मिले। कई बार आपको शक होता है ना, कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो आप क्रॉस एग्जामिन करते हो। उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया, अच्छा बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब तुम मिले। हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे। देखो हाथी को कोई सुई के छेक से निकाल सकता है? और जब मोची को ये कहा गया तो विश्वास करते हो क्या? उसे नाचने लगा, वो कहने लगा ये बड़ा केले का पेड़ जो है ये पहले एक छोटे बीज में था, जब भगवान इतने बड़े पेड़ को एक बीज में डाल सकते हैं तो हाथी को क्यों नहीं सुई के छेक से निकाल सकते। तो भक्त के मन में ये भाव है कि हर वस्तु के असली स्वामी है परम भगवान, इसलिए हर वस्तु का उपयोग किया जाना चाहिए भगवान की सेवा में। और आगे कहते हैं और हमारी आंखें आपके अभिन्न वैष्णव के रूपों का दर्शन करें। कहते हैं हमारी जो नेत्र हैं सदा वैष्णव का दर्शन लें। तो वैष्णव का दर्शन सदा लेने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारा हम सदा भक्तों की संगत में रहें, हम सदा वैष्णव की संगत में रहें। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है साधु संगत सर्वस्था सखाया लामा माता साधु संगत सर्वश्रीया। श्री सब ग्रंथों का कहना है क्या? साधु संगत का लाभ उठाओ, साधु की संगत में रहोगे तो जीवन सुधरेगा। इसलिए हमें भक्तों की संगत का लाभ उठाना चाहिए। कई बार जब हम भक्तों की संगत में रहते हैं हम इसका लाभ समझ नहीं पाते और हम अपराध वगैरह कर लेते हैं। तो साधु संगत का हमें लाभ उठाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो उन्होंने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये पूछा था कि संसार में सबसे बड़े दुख की क्या बात है? तो रामानंद रॉय ने कहा सबसे बड़ा दुख जिसको सहना बहुत कठिन है क्या है? भक्तों की संगत से जुदा रहना। तो कई बार हम केवल दोष निकालते रहते हैं, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, ये दोष है, पर हमें गुणों को देखना। और यहाँ कहा जा रहा है कि हम हमारी आंखों आपके अभिन्न वैष्णव के रूपों का दर्शन लें, मतलब कि हम भक्तों की संगत में सदा रहें। तो ये होना चाहिए हमारा भाव कि हम भक्तों की संगत में रहें। तो और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। तो ये है भगवान को समझने की विधि। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष हम सबको निर्णय करना चाहिए क्या कि हमने इस श्लोक की शिक्षा के आधार पर चलना है। और जैसे आप कहते हो, जैसे कहते हैं भगवान किनका सहयोग देते हैं? जो स्वयं प्रयास करते हैं। तो आप सब भक्ति में रुचि है, दीक्षित हो, 16 माला का दक्षा जाप कर रहे हो, 8 माला कर रहे हो, पर आप सबकी आध्यात्मिकता में रुचि है। और जन्माष्टमी के उपलक्ष हम सबको निर्णय करना चाहिए कि हमने तन मन धन से भगवान के शरणगत होना है, और भगवान के शरणगत होने का क्या उपाय है, माध्यम वो दिया जा रहा है इस श्लोक में। और अगर हम सचमुच प्रयास करेंगे तो भगवान सहयोग देंगे। प्रभुपाद जी कहते थे तुम एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे तुम्हारी तरफ, और वो एक कदम तो उठाओ। तो जन्माष्टमी की असली तैयारी यह है भक्तों के लिए कि हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हम और गहराई के साथ इस श्लोक के संदेश का पालन कर सकें, और गहराई के साथ श्रवण कीर्तन में रुचि लें, और गंभीरता के साथ विष्णु स्मरण कर सकें, तो इसके द्वारा हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। और अब क्या अनुकूल कर सकोगे, कृष्ण प्रेम जो कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रयास करोगे इसके लिए पक्का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब जैसे आपने देखा मंदिर का कार्य आरंभ हो गया है ना, और एक फ्लोर हो गया है ना। अब ये मंदिर जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहिए या स्लो स्लो स्लो। आगरा में एक मंदिर है राधा स्वामी, इसका है तो बड़ा मंदिर, पर वो 60-70 सालों से बन रहा है। ठीक ठीक ठीक। एक बार मैं गया था, वो केवल 2 कार्यकर थे। तो आप ये मंदिर फुल स्पीड में चाहते हो या स्लो स्पीड में? तो आप सबको सेवा करनी पड़ेगी। तो आप सबका जन्माष्टमी का ये योजना होनी चाहिए कि हमने ये राधा गिरधारी का महल जल्दी से जल्दी तैयार करना है। क्या विचार है? हाँ, आप में से कितने भक्तों की ये भावना है कि मंदिर जल्द से जल्द तैयार हो? अच्छा ठीक है, ये भावना आपने प्रकट तो कर ली, पर केवल भावना प्रकट करने से काम चलेगा? हाँ चलेगा तो अच्छा है। तो आगे अगला कदम क्या है, क्या करना पड़ेगा? थोड़ा धन इकट्ठा करना पड़ेगा सबको। हाँ तो आप सबसे विनती है, आपने कूपन स्कीम ये सब बनाया हुआ है, सब लोग जुड़ो। मेरे ख्याल से, बुरा नहीं मानना, मैंने किसी से पूछा नहीं है, पर मेरा अंदाजा है कि आप सब नहीं जुड़े अभी तक। मैं सच कह रहा हूँ? हाँ थोड़े थोड़े बहुत जुड़े हैं, बस ज़्यादा जो फुल टाइम डिवोटी वो थोड़े जुड़े हैं, तो कॉन्ग्रीगेशन पूरा नहीं जुड़ा अभी तक। सच बात है। हाँ तो सबको और गहराई से जुड़ना है, और हमें प्रयास करना चाहिए लोगों को जोड़ने का। भगवान का जो मंदिर है, ये प्रभुपाद जी कहते थे एक आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। जैसे बीमार व्यक्ति आता है हॉस्पिटल में इलाज कराने, मंदिर में आते हैं हम इलाज कराने के लिए। और यहाँ मीना रोड में तो अच्छी योजना है, यहाँ आध्यात्मिक हॉस्पिटल है, सामने भौतिक हॉस्पिटल। हाँ, और वहाँ भी आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। तो आप सब प्रयास कीजिए, आप सब पुराने भक्तों, और काफ़ी लंबा संघर्ष था ये मंदिर बनाने की इजाज़त लेने के लिए, काफ़ी झगड़ा करना पड़ा, काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ी, तभी भक्तों के प्रयास से ये इजाज़त मिली है। तो मेरा यही निवेदन था, आप सब जुड़िए बड़े उत्साह के साथ, भगवान के लिए भिखारी बनिए, घर घर जाइए, लोगों को जोड़ो, और लोग जुड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर बनने के बाद हजारों की संख्या में लोग आएंगे। जब झू का मंदिर नहीं बना था, छोटा मंदिर था, जब वहाँ आते थे 100-200 लोग रोज, आ जाते हैं 1 लाख। तो यहाँ आते हैं रोज मेरे ख्याल से 300-400 लोग रोज, है ना, और मंदिर बन जाएगा तो 3-4 हज़ार तो आएंगे। तो और ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा दर्शन देंगे, जीवन सुधारेंगे। तो मेरा ये खास रिक्वेस्ट था, आप सब जुड़िए और दिन रात मेहनत कीजिए। भगवान हमें मौका दे रहे हैं क्या, हमारे जीवन को सुधारने के लिए. पुणे में हम लोग ने मंदिर शुरू किया था कोई 2.5-3 साल पहले. वहाँ 4 एकड़ जमीन प्राप्त हुई है और वहाँ जब हमने योजना शुरू की थी, भक्त कह रहे थे हमने तो कभी कलेक्शन जिंदगी में किया ही नहीं, हमें छोटा मंदिर चाहिए 5 करोड़ का, 4 एकड़ जमीन है. तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी जमीन है, बड़ा मंदिर, अच्छा मंदिर होना चाहिए. सब मान गए और सब ने मेहनत की. हाँ, पिछले 2.5-3 सालों में अभी वो प्रोजेक्ट बन रहा है 30 करोड़ का और 19 करोड़ उन्होंने कलेक्ट भी कर लिया, क्योंकि सारे कॉन्ग्रीगेशन के लोग, सब लोग जुड़े साथ में. सब कॉन्ग्रीगेशन का हर भक्त घर घर जा रहा है और रिसीट बुक्स उनको दी जाती है, सब लोग कलेक्शन. उन्होंने 2 साल के अंदर 19 करोड़ से ज़्यादा कलेक्ट कर लिया. तो आप मीरा रोड में भी कर सकते हो, भगवान आपका साथ देने को तैयार है, पर हमें जरा प्रयास करना पड़ेगा और फिर भगवान सफलता देंगे. और कुछ तो सब आज और कल यहाँ ही रहोगे, कल यहाँ ही रहोगे. ओके, हरे कृष्णा. हाँ ओके, पूछे.
हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी ये प्रवचन से हमें आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हुई. एक प्रश्न मेरा ऐसा है कि कंस ने ये 6 पुत्रों को मारा, काम क्रोध लोभ मोह. तो कंस ने मारा, कंस तो असुर था और ये तो असुर के भाव है ये सारे. तो ऐसा भगवान ने ऐसी योजना क्यों बनाई, कंस के हाथ से उनको मारा?
क्योंकि एक तो हमें ये संदेश मिल रहा है सिंबॉलिकली कि अगर आप चाहते हो कि भगवान आपके हृदय में आके बैठें, तो इन कमजोरियों को बाहर निकालना पड़ेगा. और कर्मों का भी इतिहास था ये 6 बच्चों को मारने के पीछे. पर असली संदेश यह है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से जब तक आप इनको नहीं मारोगे, जब तक कृष्ण भगवान आपके हृदय में आकर नहीं बैठेंगे. सिंबॉलिकली ये है संदेश. ठीक है, स्टॉप ना. हरे कृष्ण.
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज को. और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम उनको आभार व्यक्त करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे. सबसे निवेदन है, कृपया करके आप सब लोग सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में निश्चित रूप में रहना है और पूरा दिन की सेवा में आपको उपस्थित रहना है. और साथ साथ में इस बार जन्माष्टमी के उपलक्ष में हमारा थोड़ा सा चेंजेस है कि प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव दिवस मनाते हैं, इस बार राधा गिरिधारी मंदिर में शाम को मनाएंगे. दोपहर का जो कार्यक्रम है, सब लोगों से निवेदन है कि जुहू मंदिर में मनाने के लिए चले, क्योंकि महाराज भी उस दिन उपस्थित रहेंगे. तो आप सबसे निवेदन है कि दोपहर का जो कार्यक्रम है, यानी शुक्रवार दोपहर का, वो प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस उधर मनाएंगे और शाम को इधर मनाएंगे. और जो भी आपको भोग के लिए दिया गया है, टोकरी वगैरह जो भी, वो सब चीज़ें जो है आप शाम को इधर लेके आइएगा. ये है. और रविवार के दिन महाराज का व्यास पूजा हम जुहू में मनाएंगे. तो आप सबसे निवेदन है, कृपया करके जुहू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाए, हो सके तो मंगल आरती में पहुंच जाए, क्योंकि सूरदास प्रभु और अन्य भक्तों का निवेदन है कि सुबह से ही सब उत्सव का माहौल होना चाहिए. हरे कृष्ण.
तो ये मंदिर कब तक तैयार होना चाहिए? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल? हाँ, कितना? 1 साल में हो तो सकता है. और फिर आप सुंदर रूप से ठाकुर जी की स्थापना कर सकते हो नए मंदिर में. Okay. Tomorrow I won't come. No. I came today. Tomorrow I'll be on low energy. Hare Krishna. तो आप सब प्रयास करोगे ये जो श्लोक का संदेश था उसका पालन करने के लिए. तो क्या था ये श्लोक का संदेश संक्षेप में कौन बताएगा? एक एक पॉइंट, इसमें कई पॉइंट थे. क्या ये श्लोक का उच्चारण कौन कर रहा है? नलकुबेर मणिग्रीवा. तो उन्होंने क्या कहा जब उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ? भगवान वाणी द्वारा क्या करें और कानों द्वारा और आगे हाथ और पैरों द्वारा और शरीर की अनेक इंद्रियों द्वारा और मस्तक द्वारा भगवान के चरण कमलों का चिंतन. अगर आप इस श्लोक के संदेश को अपना लो और प्रयास करो सब इसका पालन करने के लिए तो आप सब शुद्ध भक्त बन जाओगे. और इसका पालन हो सकता है प्रयास करने पर. वेरी ब्यूटीफुल वर्स. हरे कृष्णा. Thank you.